ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने सम्यक दर्शन चरण गुण माया कुकर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वा नेमी चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उचासते जाने निज गुण था लब्धि सार को पाय के करि के क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार
दोपहर में हमने गणित की 14 धाराओं संबंधी बात की थी उसमें जो आखिर में विषय चला था तो बहुतों का ऐसा आग्रह है कि वो फिर से दोबारा समझाइए क्योंकि समय के कमी के कारण हमने उसको जरा बहुत फास्ट लिया था ना। तो ये पल्य आदि क्या बात होती है उसकी बात समझ में नहीं आई ऐसा कहना था ना बहुतों का। तो ये पल्य क्या होता है उसका थोड़ा हम माप देखेंगे क्या होता है। तो पल्ले का माप देखने के पहले ये जो इतना बड़ा खड्डा करने में आता है वो रोम खंडों से भरने में आता है उसका नाप निकालने के लिए ये योजन कितना बड़ा होता है उसको भी समझना आवश्यक है। तो शास्त्र में बात आती है कि अनंतानंत परमाणुओं का ऐसा जो स्कंद है उसका एक नाम है अवसन्नासन्न विशिष्ट स्कंद जिसका नाम है अवसन्नासन्न। ऐसे उससे सन्नासन्न नाम का जो स्कंद है वो 8 गुना बड़ा रहता है उसका साइज 8 गुना ज्यादा बड़ा है। उससे भी 8-8 गुना ऐसे बड़े जो स्कंद है उसके नाम शास्त्र में बता है उससे 8 गुना बड़ा है उसका नाम है त्रुटरेणु। उससे 8 गुना बड़ा है उसका नाम है त्रसरेणु। उससे 8 गुना बड़ा है उसका नाम है रथरेणु। उससे 8 गुना बड़ा होता है उत्तम भोग भूमि का जो बाल का अग्रभाग। हम हमेशा शास्त्र में पढ़ते ना कि जो अभी अभी नया जन्मा है ऐसे 7 दिन के अंदर जन्मा हुआ घेटा मेंढा तो उसका जो बाल वो बहुत एकदम नरम होता है और उसका भी पूरा बाल बड़ा नीचे वाला नहीं लेना अग्रभाग लेना। शैम्पू की जाहिरात में देखते ना आगे एकदम ऐसा पॉइंटेड होता है वो छोटा होता है इसलिए उसका अग्रभाग कि जिसका दूसरा टुकड़ा न होवे इतना छोटा भाग करना वो कितना बड़ा है। तो अभी हमने जो रथरेणु देखा था उससे भी 8 गुना बड़ा होता है। उससे भी मध्यम भोगने वाला जो बाल या रोमखंड कहेंगे हम लोग बाल का अग्रभाग को हम रोमखंड कहें रोम यानी बाल उसका अग्रभाग खंड यानी टुकड़ा तो मध्यम भोग भूमि का है उससे भी 8 गुना वो ज्यादा जा रहा होगा। जघन्य भोग भूमि का बाल है वो उससे भी 8 गुना और जा रहा होगा या बड़ा होगा। कर्म भूमि का रोम खंड है जो बाल का अग्रभाग वो उससे भी 8 गुना और बड़ा होगा। उससे भी 8 गुना ये लिख कहलाती है उससे 8 गुना सरीसो कहलाती है वो 8 सरीसों जितना बड़ा यव नाम का धान होता है और ऐसे 8 यवों का एक अंगुल कहलाते हैं यवे ने हमारा गेहूं जितना बड़ा है समझो ना, फॉर एग्जाम्पल जव जिसको कहते हैं, और ऐसे आठ यव या जव उसका एक अंगुल का प्रमाण होता है, इसको कहते हैं उच्छेद अंगुल। अंगुल यानी विड्थ ऑफ अ फिंगर, ये उच्छेद अंगुल कहलाता है। ये अभी हमने जिस नाप से देखा ना, आठ यवों का जितना बड़ा होगा उसकी लेंथ जितनी होगी, उसकी आयाम लंबाई जितनी होगी, उसको कहेंगे एक अंगुल। इसका दूसरा नाम है उच्छेद अंगुल, क्योंकि अंगुल भी तीन प्रकार के हैं। ये जो अभी हमने नाप गिना है उसके हिसाब से अगर अंगुल को कहते तो उसका नाम है उच्छेद अंगुल। अब हम देखते हैं कि यहीं पर भोग भूमि में तो लंबे लंबे ऊंचाई जिसके हाइट कहते मनुष्यों की बहुत बड़ी थी, मालूम है आपको कितनी बड़ी? पांच, तीन पल्ले तो आयु की, यानी उसकी आयु थी। हाइट कितनी थी? तीन कोस, ये 6000 धनुष हो जाएगी इतनी। तो उनका उनकी जो उंगली होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। जब यहाँ चौथा काल शुरू हुआ तब जो पहले वहां की जो अवगाहना थी 500 धनुष वाली, वहां का जो अंगुल का प्रमाण है वो अलग होगा। अभी हम पांचवें काल में हैं, अभी जो हमारा अंगुल है वो उसका प्रमाण अलग है। अभी हम बड़े हैं, हमारे ये छोटे बच्चे हैं, उनका अंगुल, उनका अपना अपना प्रमाण अलग अलग होगा। ये अपने अपने अंगुल का प्रमाण उसको कहते हैं आत्मांगुल। यानी जिसकी जो अवगाहना है उसके अपने अपने अंगुल का प्रमाण उसको कहेंगे आत्मांगुल। अभी जो हमने आठ यवों का एक अंगुल ये प्रमाण देखा उसका नाम है उच्छेद अंगुल। और ये शास्त्र में जो सारे अंगुलों की बात होती है वो होती है प्रमाण अंगुल से। हमारा जो अवसर्पिणी का पहला चक्रवर्ती, उसके जो अंगुल का नाप होगा उसको कहते हैं प्रमाण अंगुल। वो उच्छेद अंगुल से 500 गुना बड़ा होता है। 500 उच्छेद अंगुल का एक प्रमाण अंगुल होगा, क्योंकि उनकी हाइट भी ज्यादा है ना, 500 धनुष वाली है, तो वहां उनके अंगुल का प्रमाण भी अलग है। इसको कहते हैं प्रमाण अंगुल। अब इस अंगुल का नाप लेके ये योजन कितना बड़ा होता है उसको हम देखेंगे। तो कहते हैं ये शास्त्र में लिखे कि 6 अंगुल का एक पद या पाद कहते हैं, 6 अंगुल का एक पद, 2 पाद की एक विलस्ती। विलस्ती ने वीत कह दी ना, क्या कहते हैं? वेद, वेद। हाँ, 2 विलस्ती का एक हाथ, ये एक हाथ हम कहते हैं ना, एक हाथ प्रमाण। ऐसा हाथ का प्रमाण बताते हैं, जैसे सर्वार सिद्धि वमानवासी देव कितने हाइट वाले हैं, तो एक हाथ, एक हाइट वाले इतनी, इतनी उनकी हाइट होती है। हाँ? क्या नहीं, नहीं नहीं, एक हाथ प्रमाण, एक रत्नी का एक हाथ, ऐसा उनका हाइट का प्रमाण। ये अलग अलग स्वर्गों की हाइट अपना ने भी जो हाथ बताया ना, अपना हाथ है, वैसे उच्छेद अंगुल में ही उनकी हाइट मापी जाती है, देवों की हाइट प्रमाण अंगुल में नहीं होती है, उच्छेद अंगुल में मापी जाती है। तो उनका वो हाथ अपना हाथ जैसे समझना, क्योंकि आठ यवों का एक उच्छेद अंगुल होता है, उससे वो आगे वाला नाप ले लेना, तो उससे जो हाथ होगा उतना लेना। हमने देखा 6 अंगुल का एक पद या पाद, 2 पाद की एक विलस्ती, 2 विलस्ती का एक हाथ। अभी ऐसे 2 हाथ का एक वीक कहलाता है, और 2 वीक का एक धनुष, यानी 4 हाथ का एक धनुष। हाइट कितनी है? तो 4 हाथ का एक धनुष, उस हिसाब से हाइट मापी जाती है। महावीर भगवान की हाइट कितनी थी मालूम है? 7 हाथ, यानी एक धनुष और 3 हाथ, बराबर है ना? तो 2000 धनुष का एक कोष, 2000 धनुष का एक कोष। अभी हमने देखा था उत्तम भोग भूमि वाले 3 कोष की हाइट होती है, मध्यम भोग भूमि वालों की 2 कोष, जघन्य भोग भूमि वालों की 1 कोष हाइट इतनी। हाइट बॉडी इतनी बड़ी और खाना कितना खाते हैं, चार चार दिन के बाद इतना सा वेट जितना। उत्तम भूमि वाले तो कम खाते थे, मध्यम वाले हाइट कम होगी ज्यादा खाने लगे, फिर जगन्ने वाले और हाइट कम होगी और उनका आहार बढ़ा। फिर चौथे काल में वो स्टार्टिंग में तो तीसरे काल में तो एक दिन छोड़कर होता था, फिर वो एक बार आहार चलता था और अभी बार बार, तो भी दिन ब दिन हाइट कम हो रही है। तो ये अभी हम 2000 धनुष का एक कोष देखा और चार कोष का एक योजन होता है। अब ये जब हम प्रमाणांगुल से लेते हुए जब योजन निकालेंगे तो इसको एक प्रमाण योजन कहेंगे। ये वो बड़ा वाला आगम का जो योजन कहते हैं, जिसमें ये सारे माप अभी हमने देखने जा रहे हैं। अभी ये पल्ले किसको कहना है तो ये हमको पहले में पहले एक बड़ा खड्डा खोदना है, उसके लिए योजन कितना बड़ा होता है उसका ये माप है। इस योजन के हिसाब से भी हम वो गर्त यानी खड्डा जिसको पल्ले कहते, पल्ले ने खड्डा, ये पल्ले की उपमा दी है, खड्डे की उपमा दी है। जैसे सागर ये नाप है, ये सागर नाम कहां से पड़ा, तो लवण समुद्र जो है उसकी उपमा देकर वो क्षेत्रफल समझाया जाता है, इसलिए उसको वो सागर कहते। यहां ये पल्ले की बात चल रही है। तो ऐसे जो प्रमाणांगुल से जो हमने माप देखे हैं अभी, तो ऐसा जो योजन है वैसे एक योजन ऊंडा डीप नीचे की ओर और एक योजन चौड़ा यानी डायमीटर उसका एक योजन लेना, ऐसे एक गोल खड्डा करना। इस तरह से एक योजन डायमीटर वाला और एक योजन डीप ऊंडा ऐसा एक गोल खड्डा करना, ये सब बुद्धि में करना है। अभी एक योजन में अभी हमने कोष कितने देखे, चार कोष, और एक एक कोष के माइल कितने होते हैं, दो दो माइल होते हैं ना। हाँ, अभी जो कुछ है अभी ये योजन में ख्याल रखो तो अच्छा है। तो इस तरह से जो प्रमाण अंगुल से निकला हुआ जो बड़ा योजन है उसकी बात चल रही है, उतना बड़ा एक गर्त करना यानी खड्डा करना, इमेजिन करना इसका, क्योंकि हम कहां ढूंढने जाएंगे ऐसी लैंड और कहां खड्डा करेंगे। तो जब अभी हमने भोगभूमि के बालों की बात की थी ना, उत्तम भोगभूमि की, क्योंकि उत्तम भोगभूमि से हमारे जो बाल है वो तो आठ गुना आठ गुना आठ गुना आठ वो बहुत सारे वो बीच में चले जाएंगे, तब जाके हमारा नंबर आएगा। तो ये उत्तम भूमि वाला जो बाल का अग्रभाग जिसको रोमखंड कहेंगे हम, उससे वो ठसा ठस भर देना, ये जो खड्डा किया है उसमें, उसमें रोमखंड कितने आते हैं तो 45 डिजिट वाला, 45 अंक प्रमाण संख्या आती है उसकी। तो हर 100 साल के बाद उसमें से एक रोमखंड निकालना, फिर और 100 साल बाद बीत जाएंगे तो और एक रोमखंड निकालना। इस तरह से जब वो पूरा खड्डा खाली हो जाएगा रोमखंडों से, तब जाके एक पल्ले, उसका भी नाम क्या लिखा है यहां पर देखो, व्यवहार पल्ले, इसको व्यवहार पल्ले कहते हैं। अब ऐसे एक रोमखंड की जगह जहां हमने रोमखंड गिने थे, एक एक रोमखंड के कितने अभी टुकड़े करना, तो कहते असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हो गए। अभी समय कितने हो गए, दोपहर में हमने नाप देखा था, एक सेकंड में सैकड़ों यानी हजारों आवली होती है और एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं, असंख्यात समय तो वहीं शुरू हो जाते हैं। तो एक मिनट में कितने हो गए, एक घंटे में कितने हो गए, एक दिन में कितने होते, एक साल में कितने हो गए, ऐसे असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय है, उससे अभी जो व्यवहार पल्लों के रोमखंड थे उसको मल्टीप्लाई करना, यानी एक एक खंड के इतने ही टुकड़े करना, तो उनके कितने हो गए, उतने समय का एक उद्धार पल्ले होता है। अभी उद्धार पल्ले के जितने समय है उसको असंख्यात वर्षों के समयों से गुणा करो, उसके जितने समय हो गए वो हो जाएगा अद्धा पल्ले। ये अद्धापल्यों में ये कर्मों की स्थिति वगैरह सागरों में नापते हैं ना, उसके लिए ये अद्धापल्य का माप होगा। आयु वगैरह जो मापते हैं देवों की, ये अद्धापल्यों में। द्वीप सागरों की संख्या वगैरह वो उद्धार पल्यों में मापेंगे। अभी ऐसे जो अद्धापल्य है, 10 कोड़ा कोड़ी, 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं एक के ऊपर? 7। और कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ गुना करोड़, तो 14 जीरो आ जाएगी एक के ऊपर, तो कोड़ा कोड़ी कहलाएंगे। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्यों का एक अद्धा सागर होता है। और हम देखते हैं, हमने बहुत बार सुना है शास्त्र में कि कोई जीव मिथ्यात्व की अधिक से अधिक लंबी स्थिति बांधेगा तो 70 यानी 70, ये गुजराती वाला 70 नहीं, हिंदी वाला 70, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति एक समय में बांधता है। एक समय में बंधे हुए कर्म इतने साल तक चलेंगे, तो उसमें ये माप आता है। हमें पता ही नहीं ना पल्ले और सागर क्या होता है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या बांध रहे हैं और कितना भोग रहे। वो करने में तो बहुत आसान लगता है, परंतु उसका स्वरूप देखने जाए तो ऐसा लगता है ये क्यों हमारे सिर में बहुत दुख रहा है। ये इतना, ये तो इसका स्वरूप अगर ख्याल में आए कि ये आधा पल्ले और ये आधा सागर क्या चीज होती है। ऐसे सागरों में, ये तो देवों की आयु भी ये सागरों में होती है वैसे, इसीलिए तो उनको अमर कहते हैं। मालूम है ना आपको उनको अमर कहते हैं? कहीं सुना है आपने अमर नाम सुना है तुम? हाँ हाँ, भक्तामर, भक्तामर कर दिया हमने उसको, भक्तामर। अमर भक्त है ना वो, देवल देव भक्त। तो ये उनकी भी आयु सागरों में होती है। हम देखते हैं सरवार सिद्धि सबसे ऊपर के वैमानिक वाले 33 सागर आयु है, तो हमें अच्छा लगता है, अरे वाह इतनी आयु। देवों की कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, आराम से रहना, कुछ नहीं, वो तो चारों ही गति में दुख है। अब वहां पे जाने वाले कौन होते हैं? जो मुनिराज होते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं या बहुत ऊपर के गुणस्थानों में वाले, वो वहां जाते हैं मरकर, तो उनके लिए वो सजा है, दंड है क्या? अच्छा मानते होंगे वो। क्योंकि यहां तो कितने ही, तो 11 गुणस्थान में मरकर वहां पहुंच जाते हैं चौथे गुणस्थान, और इतने सागर तक चौथे में रहेंगे, वहां तो कोई ऊपर गुणस्थान चढ़ने की कोई वहां पॉसिबिलिटी नहीं, कोई योग्यता ही नहीं होती उन जीवों की। तो ऐसे ये सागर का माप है। दोपहर में जो हमने पल्ले की बात निकाली थी, तो ये पल्ले में तो इतने समय होते हैं। आगे हमने विरूप वर्ग धारा जो देखी थी कि उसके ये पल्ले का जितना माप है, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, उसका वर्ग करो, ऐसे असंख्यात बार वर्ग करते जाओ, तब जाके अंगुल नाम का एक माप आता है। उसका नाम अंगुल खाली कहो या सुचंगुल कहो, एक ही बात है। सुचंगुल यानी एक सिंगल लाइन में अंगुल का नाप, जैसे हम कहें कि मान लेते कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हम सीधी लाइन में नापते हैं ना, और क्षेत्रफल निकालना है तो 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, तो 1 चौरस सेंटीमीटर कहेंगे, या 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर 4 चौरस सेंटीमीटर कहेंगे, वो चौरस हो जाता है। शास्त्र में उसको प्रतर शब्द है, चौरस के लिए प्रतर। तो जैसे भी यहां अंगुल, हम सिंगल लाइन वाला अंगुल लेते हैं, उसका नाम है सुचंगुल। तो अंगुल में प्रदेश नापते हैं। अभी तो हमें पल्ल का जब माप देखा तो हमें ऐसा लगा, अरे बाप रे कितने सारे साल इसमें हैं। संख्या देखी ना उसमें, समयों की संख्या देखी। अंगुल क्या बताता है? प्रदेशों की संख्या बताता है। अंगुल प्रदेशों की संख्या बताता है। ये तो क्षेत्र से संख्या बताने का माप है, इसको कहते हैं उपमामान। 1, 2, 3, 4 संख्या नापते हैं तो उसको कहेंगे संख्यामान। कितने हैं? तो लाख है, करोड़ है, अब्ज है, पूर्व है। पूर्व शब्द सुना है कि नहीं? सुना है, 84 लाख पूर्व आदिनाथ की आयु थी, ऋषभदेव की। तो एक पूर्व कितना बड़ा होता है? तो 84 लाख गुना 84 लाख उसका एक पूर्व होता है। यानी एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष। ये जो है वो संख्याएं हैं। कहने का ये सब क्या, जैसे अधिक से अधिक कर्मभूमि के मनुष्यों की अधिक से अधिक आयु कितनी होती है, तो 1 करोड़ पूर्व, 1 पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व, 4 पूर्व, ऐसे 1 करोड़ पूर्व। विदेह क्षेत्र में अभी सिमंदर भगवान आदि जो वहां के तीर्थंकर विराजमान है, वहां की उत्कृष्ट आयु ये 1 करोड़ पूर्व की। ये जो सारे वो संख्या है, यानी जिसको हम गिन सकते हैं, इसको संख्या मान कहते हैं। परंतु अभी जो हमने पल्ले का माप देखा, वो तो गिनने में, वो तो समझाने में बहुत कठिन है, तो उसको एक माप करके बता दिया कि इतने इतने इसको हम पल्ले कहेंगे। इसको कहते उपमा मान, किसी शब्द की उपमा देकर उसको समझाते हैं। यहां पल्ले ने खड्डे के साथ उसकी उपमा देके समझाया है, तो उसको कहते हैं उपमा मान। ये पल्ले है, सागर है, इसको उपमा मान कहते हैं। तो पल्ले तो कितना बड़ा है, अभी हमने देखा था कि जिसके असंख्यात वे भाग में असंख्यात करोड़ वर्ष चले जाते हैं, ऐसा तो पल्ले है। सागर तो उससे बड़ा माप है। अब यह अंगुल है, हमें तो लगता है अरे अंगुल तो इतना छोटा है और पल्ले तो कितना बड़ा है, पर पल्लों में जो हमने समय गिने हैं उसको असंख्यात बार वर्ग 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 करते जाओ तो अंगुल में प्रदेशों की संख्या आती है। प्रदेश इतना सूक्ष्म है, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक सुई के नोक के ऊपर वहां भी असंख्यात प्रदेश है, वहां तो असंख्यात देह होते हैं। वो निगोद की बात आपने सुनी है बहुत बार कि नहीं सुनी, तो बोलिए। हाँ, सुई के नोक के ऊपर, हाँ वहां जो अभी वहां तो बटेटे का टुकड़ा समझाया, परंतु सूक्ष्म निगोरों को समझाना है तो हमें किसी के आधार की जरूरत नहीं, तो हम खाली बताएंगे कि इतने क्षेत्र में इतने रहते हैं। अभी यहां तो ये बादल निगोद की बात आप समझा रहे हैं, तो उसके ऊपर जितना बटाटा का टुकड़ा आएगा उतना छोटा, उसमें तो असंख्या देह, देह की बात है ना, असंख्य, हाँ वो तो सब पूरी की पूरी, हाँ वो सारे समझना आपको। उसमें असंख्यात अंडर होते हैं, एक एक अंडर में असंख्यात आवास होते हैं, उसमें असंख्यात पुलवी होते हैं, उसमें असंख्यात देह होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव, निगोद की बात चल रही है ना, ये प्रवचन सार में आता है कि मांस खंड का दोष बताया वहां, मांस पेशी का, कि जो मांस पेशी किसको कहते हैं मालूम है, मांस किसको कहना, हाँ हाँ, दो इंद्रिय से लेकर पंचसंगी पंचेंद्रिय, सब संगी पंचेंद्रिय लेना क्या उसमें, देव नारकी को छोड़ दो उसमें से, क्योंकि उनके शरीर को मांस नहीं कहते, बराबर। ये तिरियन चार मनुष्य की बात है, तो उनके जो शरीर है तो उनको औदारिक ही होता है, तिरियन चार मनुष्यों का, हाँ तो उस शरीर को मांस ऐसा कहते हैं। तो अन्य मति कहते ना, अरे वो क्या, हमने थोड़ा ही मारा, वो अपने मरण से मर गया, तो हमें अभी हिंसा का दोष नहीं है, ऐसा अन्य मति बुद्धिज्म वो भी ऐसा मानते हैं, दूसरे ने मारा तो स्वयं वो मांस खाते हैं। परंतु वहां तो कहा है कि वो कच्चा मांस हो, पकाया हुआ हो, पकता हुआ हो, तो भी निरंतर, निरंतर शब्द है उसमें, अनंत जीव उत्पन्न होते हैं निगोद जी, ये सब होता है क्योंकि उसके ऐसे मांस पेशी का ही ऐसा उसका स्वरूप है। अब यहां बात क्या चल रही है, हमें तो यहां गणित समझना है, तो अंगुल में प्रदेश कितने उसकी बात चल रही है। कहां थे हम, अंगुल की बात हो रही थी, पल्ले में समयों को गिनते हैं और अंगुल में प्रदेशों को गिनते हैं। हाँ देखिए, अच्छी बात है आपने बताई कि एक सुई के नोक को बराबर, अभी हमने जो देखे थे 5 बार असंख्यात लोक को आपस में गुणा करो, कितना, 5 बार, 5 बार कितने से गुणा करना, असंख्यात लोक, एक लोक यानी क्या, अभी सुई के नोक के ऊपर असंख्यात प्रदेश, अभी अंगुल में कितने प्रदेश अभी अभी हमने देखे, अभी एक अंगुल में इतने, तो पूरे इस हॉल में कितने हो गए प्रदेश, पूरे देवलाली में कितने हो गए, पूरे महाराष्ट्र में कितने हो गए, पूरे इंडिया में कितने, पूरे लोकाकाश में कितने हो गए। उस लोकाकाश के प्रदेशों का प्रमाण जो है उसको कहते एक लोक, वो गिनती को। ऐसे एक लोक, दो लोक, चार लोक, ऐसे असंख्यात लोक, असंख्यात लोक एक बार, असंख्यात लोक दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार रखो, आपस में गुना करो, इतने तो देह निगोदी के देह, इतने निगोड़ शरीर एक सुई के नोक के ऊपर के बटाटे के टुकड़े में, और ऐसे एक एक शरीर में अनंत जीव। कैसे अनंत, हर समय नई नई बैच उत्पन्न होती है। स्कूल में क्या होता है, हर समय नई बैच एडमिशन देते हैं ना, वैसे यहां भी हर समय एक एक लॉट वहां उत्पन्न होता है, एक साथ अनंत उत्पन्न होते हैं, तो अनंत एक साथ मरते हैं, दूसरे समय में आने वाली बैच अलग। स्कूल में चलते ना पहली क्लास, दूसरी क्लास, दसवीं क्लास, तो दसवीं क्लास तक ही है और साल भर के बाद वहां एडमिशन मिलती है। यहां तो क्या है, हर समय नए जीव आएंगे और वो अंतर्मूर्त यानी असंख्यात समयों तक रहेंगे और उसके बाद एक साथ आए हुए एक साथ मरेंगे। दूसरे समय में आए हुए वहीं पर है अभी, जो मर कर निकल जाएंगे फिर भी हर समय आए हुए वो लौट वहीं पड़े हैं, अपने अपने मरण से मरेंगे। हाँ, क्या क्या, हाँ आपका ऐसा प्रश्न है, क्या ऐसा हो सकता है कि निगो जीव मरा और उसी शरीर में दोबारा उत्पन्न हुआ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना, ऐसा होता है, वहां भी होगा, या चौदराजु गमन करके ऊपर के नीचे के छोर में से निकल के ऊपर के एज में चला जाएगा लोका, कहीं भी जा सकता है, मतलब निगो शरीर आपका प्रश्न ऐसा है, सूक्ष्म निगोदिया तो पूरे लोकाकाश में भरे हैं, अकेले सूक्ष्म निगोद ही नहीं, सूक्ष्म निगोद यानी सूक्ष्म वनस्पति का एक चीज, साधारण वाले सुनो, अभी सुनो आपका प्रश्न है ना, अभी उसका उत्तर सुनो। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म जल का एक, पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। इसीलिए तो कहा तिर्यंश लोक, तिर्यंश जीव कहां रहते हैं, पूरे लोकाकाश में, और देव ऊर्ध्वलोक में, नारकी अधोलोक में, मनुष्य मनुष्यलोक में, और तिर्यंश पूरे लोकाकाश में। एक इंद्रियों की अपेक्षा है ना, हम तिर्यंश आने खाली घूमने वाले वो पंचेंद्रिय दिखते उसी को तिर्यंश समझते, ऐसा तो ही नहीं। तो ये सुई के नोक के बाद चल रही थी, तो ये सूक्ष्म निगोद तो सर्वत्र बिना आधार के रहते हैं, और बादर निगोदिया कहां रहते हैं, या तो अभी हमने जो मांस देखा द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का शरीर, या तो उसके आधार से रहेंगे, या प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वाले जो है वनस्पति उसके आधार से, जिसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, जैसे कोई बादर निगोद रहते हैं और बाद में वो निकल जाते हैं, अति से छोटे छोटे फल है या कोंपल जिसको कहते हैं, अंकुर उत्पन्न हुआ है वो उसमें होते हैं, या जो पर्व गांठ साठे होते हैं उसके अंदर, या भी बटाटा या आलू प्याज कंदमूल जो है उसके अंदर, ये सारे बादर निगोद उसमें रहते हैं।
और सातवीं नगर के नीचे जो बादर निगोद
वहां भी है, अभी अपना विषयांतर हो रहा है वहां भी सातवें नरक के नीचे एक राजू वाला स्थावर लोक या वहां कलकल भूमि कहने में आती है, वहां पूरे ही निगोद राशि पड़ी हुई है,
बस वहां निगोद जीव,
वो वहां निगोद जीव ही रहते हैं
सब बातें।
हाँ अभी पंचेंद्रिय है ना, मनुष्य और तिर्यंश इनके शरीर में रहते हैं बादर निगोची, बादर निगोच सूक्ष्म की बात नहीं, सूक्ष्म के लिए आधार की जरूरत नहीं होती। जब 12वें गुण स्थान में यह निबोध राशि शरीर में से निकल जाती है और 13वें गुण स्थान में परम औदारिक शरीर होता है, उसमें कोई निगोध नहीं, स्फटिक जैसा निर्मल हो जाता है। सूक्ष्म निगोध या तो शरीर से आधार में थे ही नहीं, वो जहां तहां पड़े हैं, वो जहां तहां अपनी अपनी जगह है, उनका कुछ ऐसा घूमना तो होता नहीं है। निकल जाते हैं वो तो कहने के लिए, पहाड़ के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय जीव गमन नहीं करते। निकल जाते हैं उसका कोई रोक नहीं होता, उसके अंदर भी रहेंगे, वो स्वयं ऐसा गमन नहीं कि जैसे पंखी उड़ते हैं आकाश में, ऐसे तो वो उड़ेंगे नहीं। हाँ, सब जगह है। सिद्धशिला तो पृथ्वी का एक वहां गई। निगोदिया सूक्ष्म हो गए, बादल नहीं हो गए। बादल निगोद जीव पृथ्वी का एक उनके आधार से नहीं रहते। ये जो पृथ्वियां है ना, 8 पृथ्वियां, उनके आधार से बादल निगोदिया नहीं है। वहां उसी प्रदेशों में सूक्ष्म निगोद है, जहां पर पूरे ही लोकाकाश में कुछ भी हो, अभी यहां ये माइक है, ये मेटल है, उसके अंदर भी सूक्ष्म निगोद या सूक्ष्म पांचों ही सारे इसके अंदर भी है ना, जहां तहां है, पूरे ही लोकाकाश है, उसके लिए कोई बात रुकावट नहीं है उसके लिए।
तो मतलब वो शरीर तो होगा,
होता है ना, सब कुछ होता है। सुनो सुनो, निगोद जीव नारकी और देवों के शरीर में नहीं होते, ना ही आहार शरीर में होते हैं, ना ही पृथ्वी में होते, ना ही अग्नि में होते, ना जल में होते, ना वायु में होते, ना तीर्थंकरों के शरीर में होते हैं। केवल उनके तो होने का सवाल ही नहीं है।
तो अपने शरीर में जो बादल निगोद जीव है उनका भी शरीर तो अलग ना, अपना शरीर से। हाँ,
देखो बादल निगोदियों का वो निगोद शरीर अलग होता है। निगोद शरीर की ऐसी स्पेशलिटी है, उस निगोद शरीर में हमने देखा था, शरीर तो एक है, मान लेते यही निगोद शरीर है, और हर समय नए नए अनंत जीव उसमें आकर रहते हैं, और जिनकी आयु पूरी है वो निकल जाते हैं, यानी हमेशा इसमें अनंत बने ही रहेंगे। ऐसा शरीर असंख्यात वर्षों तक टिका रह सकता है, निगोद शरीर
ऐसे में
नहीं,
जैसे अपन एक फर्सी नहीं लगाते।
देखो देखो सुनो, पृथ्वी का एक में ऐसा नहीं होता, उसकी बात अलग है, अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा अपना विषय चलाएंगे। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इसके संदर्भ में बहुत अपने प्रश्न भी उठते हैं और ये स्वाभाविक भी है। शरीर होते हैं अनंत अनंत जीव। सूक्ष्म होगा प्रदेश की सूक्ष्मता हम देख रहे थे, ख्याल है ना, हमें तो क्या, एक सुई के नोक के ऊपर भी इतने असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है, इसकी बात चल रही थी ना। तो विषयांतर करते करते सिद्धशिला भी घूम आए हम। हाँ, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अंगुल में तो अभी हम प्रदेशों की संख्या गिन रहे हैं, अभी देखा ना, पल्ले में तो असंख्यात है, अंगुल में भी असंख्यात प्रदेश है, तो एक अंगुल में इतना है। अभी एक शब्द आता है प्रतरांगुल और घनांगुल, अंगुल गुना अंगुल उसको हम प्रतरांगुल कहेंगे, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं अपनी भाषा में। कितना बड़ा घर है आपका, तो हम किसमें चौरस में कहते ना, इतना स्क्वायर पे, स्क्वायर यानी चौरस, यानी अपने शब्द में प्रतरांगुल, प्रतर फुट कहेंगे हम उसको, और उसका घन करेंगे, उसकी हाइट भी उसमें गुणा करेंगे तो वो घनफल हो जाएगा, तो उसको घनांगुल कहते हैं। तो ये हाइट वगैरह या अवगाहना कितनी है, वो शरीर कितना बड़ा है, कितना वॉल्यूम है, ये कहने के लिए घनांगुल शब्द आता है शास्त्र। ये तो एक स्टेप, हमने द्विरूप घनधारा में कौन कौन सी संख्या देखी थी, उसमें अंगुल नाम का एक माप है। अब ये अंगुल तो इतना, उंगली जितना चौड़ा है ना, अभी उसके आगे बढ़ते 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 बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। एक हमने माप देखा था कि वो द्विरूप वर्गधारा में नहीं आता है, परंतु द्विरूप वर्गधारा में जहां जहां जो जो संख्या है उसका घन द्विरूप घन धारा में आता है। फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट 2 का वर्ग 4 देखा था, पहला स्थान वहां 4 देखा था, द्विरूप घन धारा में 2 का घन 8 का वर्ग 64 यानी पहला स्थान 64 है। द्विरूप धारा में वर्ग धारा में जहां 4 था, द्विरूप घन धारा में वहां 64 आ गया यानी वो 4 का घन हो गया। जिस स्थान पर पल्ल्य होगा उसी स्थान में द्विरूप घन धारा में पल्ल्य का घन हो जाएगा। जिस स्थान में अंगुल है उतने ही स्थान हम द्विरूप घन धारा में गिनेंगे तो घनांगुल होगा। कोई बात नहीं, अभी हम ये द्विरूप वर्ग धारा की बात ऐसे उसमें भी हमने अनंत तक गए थे। हम पहले असंख्यात वर्ग स्थानों की बात देखी थी, उसके बाद अनंत के भी बहुत सारे भेद है, वो उसी में वर्ग धारा में आते हैं। जगन्य परितानंद भी है, वो युक्तानंद भी है, अनंतानंत की भी बहुत सारे भेद है। उसमें हमने एक भेद देखा था जीव की संख्या, दोपहर में जो हमने बहुत फास्ट लिया था अंतिम 2-4 मिनट में, तो जीव की संख्या कितनी है तो एक मध्यम अनंतानंत नाम का भेद है उतनी है। हम सामान्य से क्या कहते हैं पुद्गल कितने हैं, जीव से अनंत गुणे, परंतु वो अनंत गुणे कितने हैं इसका एहसास हमको नहीं होता। अभी जैसे हमने देखा ना 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65,536 जिसको पन्नट्टी कहते हैं, वैसे यहां जितनी जीव की संख्या है उसको एक बार वर्ग करो अनंत का, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, ऐसे कितना बार करना, अनंतानंत बार। अकेले अनंत बार नहीं, क्योंकि अनंत भी 3 प्रकार के, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत।
अनंतानंत वाला लेना इसमें।
अनंतानंत बार वर्ग करो जीव की संख्या का, अनंतानंत बार वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग करो तब पुद्गलों की संख्या आती है, पुद्गल परमाणुओं की इतने अधिक है। अब जितना पुद्गल परमाणुओं का माप है उस संख्या को फिर अनंतानंत बार वर्ग करते जाओ तो जाके क्या होगा, अनंतानंत वर्ग स्थान होने पर 3 काल के समयों की संख्या आएगी जो कभी नहीं टूटने वाली है, जिसको अक्षय अनंत कहते हैं। अब उसका भी अनंत बार अनंतानंत बार वर्ग 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 करते जाओ आगे, तब जाके वो आकाश के प्रदेशों की संख्या आएगी। क्या लगे? और वो भी पूरे आकाश के प्रदेश नहीं आएंगे उसमें, जैसे हमने सूचंगुण में सिंगल लाइन में देखा था वैसे आकाश प्रदेशों की श्रेणी रूप संख्या आएगी उसमें। आकाश तो घन स्वरूप है, उसको लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है ना? हाँ, तो ये हम 3 काल के समय से अनंतानंत वर्ग करने पर आकाश की श्रेणी का समय संख्या आएगी, उसका घन करेंगे तो आकाश पूरा आएगा।
मैंने जो वर्ग करने का कहा तो जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 25 का वर्ग ऐसे करते
हाँ वही तो, ये अनंत है ना, सारे अक्षय अनंत है, फिर भी उससे वो बड़ा है ये बताना है। और ये केवल ज्ञान के ज्ञान का विषय है। तो 3 काल के समय से भी आकाश के प्रदेश अनंत गुणा है। ये तो सारे सिद्धांत प्रवेशिका में आपने सारे गिनाए थे ना, वो सारे अनंत, ऐसे आकाश के प्रदेश अभी हमने जितने अनंत गिनाए हैं उससे अनंत गुणे प्रत्येक द्रव्य में गुण होते हैं। तो हम स्वयं प्रत्येक जीव इतने अनंत गुणों के स्वामी हैं, हमें तो 2-4-5 लाख करोड़ कुछ हो गए तो उसकी महिमा आती है ना, ये अनंत को जानते ही नहीं उसकी महिमा भी नहीं आती। तो ये दोपहर का विषय जो हमने बहुत फास्ट किया था इसके, ये तो अभी तो आकाश के प्रदेश, उससे भी आगे अनंत अनंत ऐसे अन्य भी संख्या है सबसे, वो तो देखे थे। अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद देखे थे धर्मा धर्म द्रव्य के, उसके बाद सूक्ष्म निगोल लब्धि अपर्याप्त जीव जो है, सबसे जघन्य ज्ञान वाला जीव, उसकी भी ज्ञान की पर्याय में कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, तो उससे भी अनंत गुणे, अनंतानंत वर्ग स्थान जाने पर, ये सबसे जघन्य ज्ञान, तो अपना ज्ञान तो उससे कितना है, पंचेंद्रिय का है ना, हमारा संगी पंचेंद्रिय का, उसके तो कितने अनंत गुणे होगा, तो सबसे अनंत में अनंत जो कुछ है केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है, उससे अनंत कोई अन्य संख्या है ही नहीं। तो ये तो संख्या है, हमने कोई माप जो आता है शास्त्र में उसकी चर्चा की थी, जो जो हम संख्या द्विरूप वर्गधारा में देखी थी उसी के घन संख्याएं द्विरूप घनधारा में पाई जाती है, और उस घन के भी घन संख्याएं द्विरूप घना घन धारा में आती है, उसमें भी ये सारा जो लोक वगैरह जो होता है ना वो उसमें आते हैं, आकाश के प्रदेश, लोक के प्रदेश वगैरह वगैरह। तो ये तो अपना उस संख्या संबंधी का विषय हुआ। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछना क्योंकि क्या है बीच में ही बहुत लंबा बीच में ही ज्यादा आते हैं। क्या है कर्णान युग में तो बहुत सारी बातें हैं, और जान हाँ अंगुल को ही सुच्चंगुल कहते हैं। सुच्चंगुल एक श्रेणी रूप, श्रेणी ने के पंक्ति रूप, यानी एक प्रदेश थिन होता है, ज्यादा चौड़ा नहीं। अभी इसके हम माप निकालेंगे तो इसको कोई मोटाई चौड़ाई है ना, वो रुंदी भी है और लंबी भी है उसको, है ना, और इसको कोई ऐसे गोल भी है, तो इसका क्षेत्र अलग होगा। जब हम अंगुल या श्रेणी अंगुल या सुच्चंगुल कहते हैं, एक सिंगल लाइन में कहीं भी ले लो, जैसे आप एक मीटर कहो, एक मीटर जब कहते हैं तो एक मीटर खाली लंबाई सूचित, तो उसको कुछ मोटाई भी है, तो वो उसका माप हम अलग से कहते हैं, वो तो स्क्वायर बन जाता है, प्रत्रांगुल लंबा और चौड़ा, वो प्रत्रांगुल होता है। जैसे धागा नापना है तो हम लेंथ बताएंगे ना, एक मीटर का धागा वो सुच्चंगुल हो गया, एक सेंटीमीटर का धागा हमने कहा, तीन डायमेंशन हो गए तो घनांगुल होगा, एक प्रतर, प्रतर यानी ऐसा, इसको प्रतर कहेंगे, इसके लंबी भी है और रुंदी भी है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो प्रतर होगा, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। हाँ ये तो क्षेत्र बताने की बात है। हाँ हाँ उसमें तो रहेंगे। आपका प्रश्न ऐसा है, सूक्ष्म निगोदिया किसी शरीर के आधार से नहीं रहते, तो जहां परम औदारिक शरीर है वहां पर रहेगी कि नहीं रहेगी, तो जरूर रहे, पांचों प्रकार के सूक्ष्म जीव रहेंगे वहां पर। जहां सिद्ध भगवान विराजमान है वहां के आकाश प्रदेशों में भी सूक्ष्म जीव है ना, पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म जीव है, वहां तो वायु कायिक भी तो है ही ना, ये तनुवात वाले के वायु कायिक वहां है। सिद्ध भगवान कहाँ है मालूम है ना? हाँ तनुवात वाले कहाँ है? देखो सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला के ऊपर तीन वात वाले है, घनोदधि वात वाले, घनवात वाले और तनुवात वाले। हाँ तो तनुवात वाले के अंत में सिद्ध भगवान के ये माथे के प्रदेश वहां लगे हुए, और कोई हाइट वाले कोई छोटे है ना, जैसे महावीर भगवान सात हाथ वाले और आदिनाथ भगवान पांचों धनुष वाले, तो डिफरेंस उनके हाइट में होगा, सबके माथे एक लेवल पर होंगे, यहाँ हमारे सबके पैर एक लेवल पे है और माथे अलग अलग। कौन से वनस्पति का है? बादर वनस्पति का एक घनांगुल का संख्या क्या होगा? ये अभी उच्छेद अंगुल समझे ना, अंगुल का संख्या क्या होगा? बिल्कुल होगी। कौन सभी कहते हैं? एक पेड़ एक जीव नहीं है, बहुत सारे जीव,
आधा काट लो
तो भी उसमें जीव है ना।
नीचे वाले में बहुत सारे
देखो, उसके वो पत्तियों में जीव है, फूलों में है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स है उसमें अलग अलग जीव है, उसकी अवगाहना जो है छोटी होती है। इसको प्रत्येक शरीरी जीव कहते हैं, उसको स्कंद कहते हैं। ये स्कंद हुआ, इतने सारे शरीरों का मिलकर स्कंद हुआ। जैसे हमको एक चिंगारी दिखाई दी अग्नि की, वो अग्नि की चिंगारी एक जीव नहीं है, असंख्यात जीवों के शरीरों का वो समूह है एक स्पार्क में, क्योंकि उनकी अवगाहना इतनी छोटी होती है ना। जब हमें चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो दिखाई देता है, ये इतने असंख्यात जीवों के शरीरों का स्कंद है, स्कंद कहलाता है। हमें जो पृथ्वी एक कोई रत्न दिखाई देता है, या कोई रत्न में तो ठीक है समझो एक भी होता है उसमें, परंतु पृथ्वी जो मिट्टी के कण दिखाई देता है उसमें तो असंख्यात जीव होते हैं। देखो ये वनस्पति कायिक के बारे में बहुत कंफ्यूजन चलती है, अभी सुनो। वनस्पति कायिक जीव है, उसमें जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो हम कहेंगे कोई प्रत्येक शरीर वाले हैं और कोई साधारण शरीर वाले। प्रत्येक शरीर वाले का अर्थ क्या होता है? एक शरीर, उसका स्वामी एक जीव। जैसे यहां एक मनुष्य देह, उसका स्वामी एक मनुष्य, उसके आधार से वो वर्म्स वगैरह रहेंगे, निगोद रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, उसकी बात नहीं है। वो उनका अपना शरीर अलग होगा, वो मनुष्य जीव नहीं कहलाएंगे, ख्याल है ना। तो यहां एक मनुष्य है, एक देह है उसका, बराबर, एक मनुष्य शरीर है, एक मनुष्य जीव स्वामी है। वैसे एक देह और एक स्वामी, ऐसे उसको कहते हैं प्रत्येक शरीरी जीव। ऐसे प्रत्येक शरीरी जीव कौन कौन है आपने सुने? हाँ, प्रत्येक शरीरी जीव, एक जीव और उसका एक देह। हाँ, सब है बराबर, निगोद को छोड़कर सभी, पृथ्वी का एक हो, वायु का एक हो, अग्नि का एक, जल का एक हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो कुछ हो वे सारे प्रत्येक शरीरी ही है। मैंने प्रत्येक शरीर किसको कहते हैं सब कुछ, हाँ नहीं, वनस्पति के भेदों में नहीं, हम उसको भी अलग रखा। हाँ, अभी तो प्रत्येक शरीर को समझा है, बराबर। अब वनस्पति कायिकों के हम भेद देखेंगे। तो वनस्पति कायिकों में कुछ तो प्रत्येक शरीर वाले हैं, एक उनका देह और वो एक जीव, और कुछ ऐसे है वनस्पति कायिक कि उसको साधारण कहते हैं। साधारण ने शरीर तो एक औदारिक शरीर, उसमें उसके आधार से रहने वाले जीव अनंत, उनको उनकी आयु समान है, क्योंकि एक साथ जन्मते एक साथ मरते, एक ही श्वासोश्वास है, जो कुछ शरीर का ग्रहण या आहार जो कहलाते हैं वो भी एक ही है उनका। ये सब उसको कहते हैं साधारण वनस्पति का एक जीव। अब जो प्रत्येक हमने देखे थे उसके दो भेद, एक स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक और एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक। स्वप्रतिष्ठित है तो प्रत्येक शरीरी, उनके आधार से निगोद जीव रहते, बादर निगोद उनके आधार से रहते, और जिनके आधार से बादर जीव नहीं रहते उसको कहेंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक। अब जो हमने साधारण वनस्पति देखी जिसको हम निगोद कहते हैं, उसमें भी कुछ बादर है कुछ सूक्ष्म है। निगोद में भी दो प्रकार है ना, बादर निगोद और सूक्ष्म निगोद। बादर निगोद किसी के आधार से रहते हैं, सूक्ष्म निगोद तो अपने वो ऐसे ही अंतराल में सब जगह रहते हैं। कौन से अंकुरित वगैरह? वो सप्रतिष्ठित, वो अंतर मुहूर्त तक उसमें पाए जाते हैं, बाद में वो निकल जाते हैं। उसकी भी मर्यादा हर एक की कुछ अलग अलग होती, कहां तक वो प्रतिष्ठित है। उस समभंग कहते हैं ना, बहुत छोटे पत्ते होते हैं या कोई फल होते हैं, हाँ, तो ऐसा टुकड़ा करेंगे और समभंग हुआ, इक्वल और टूट गए, तो उसको कहते हैं उसमें वो सप्रतिष्ठित है, सप्रतिष्ठित है। और वो तंतु लगे रहते हैं, टेढ़े मेढ़े टूटते हैं, समभंग नहीं होता, तो उसका वो लक्षण है कि वो अप्रतिष्ठित है। अब ये जो साधारण हमने देखे, अंकुर बड़े हो जाते तो अप्रतिष्ठित हो जाएंगे, फिर वो उसमें से फिर पत्ते। हाँ, उसमें भी वो तो सप्रतिष्ठित हो जाते हैं। अभी ये निगोद की बात, साधारण निगोद की बात, उसमें भी कुछ बादर है, कुछ सूक्ष्म है, उस दोनों में पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है। बादर निगोद भी पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं, सूक्ष्म भी पर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त होते हैं। ये पर्याप्त अपर्याप्त क्या होते हैं? तो पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं, उनकी पर्याप्ति जो कहलाती है वो पूर्ण होती है, और उनकी भी आयु अंतर्मुहूर्त तक रहती है, उसको पर्याप्त निगोद्यु कहेंगे। अपर्याप्त किसको कहेंगे? कि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और पर्याप्ति पूरी हुए बिना उसके पहले ही मर जाते हैं, जिसको हम कहते ना एक श्वास के 18वें भाग में मरते हैं, इतनी उनकी अल्प आयु रहती है, उसको अपर्याप्त जीव कहते हैं। इस तरह से वनस्पति कायकों के भेद प्रभेद है। कितने समय तक लेना है? हो गया,
हाँ।
आपका प्रश्न है लब्ध नहीं, लब्धि अपर्याप्त, हाँ उसका ऐसा कहना, लब्ध्य पर्याप्त, धी प्लस अभ्य हो जाए, लब्ध्य पर्याप्त कहो, लब्धि अपर्याप्त कहो, यानी वो अपर्याप्त जीव है, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय वाला है। वो लब्धि अपर्याप्त जीव किस में होते हैं? एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीनइंद्रिय, चतुरइंद्रिय, पंचेन्द्रिय, सब में हो सकते हैं। जी पंचेन्द्रिय तिर्यंश तक तो होते ही है, मनुष्य भी लब्धि अपर्याप्त होते हैं, जिसको समूर्छन मनुष्य कहने में आता है, उनकी भी आयु इतनी छोटी होती है। कितनी? एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण की बात है, वो अकेले निगोद की बात नहीं है,
ये भी पर्याप्ति पूर्ण होने देना चाहिए।
बिल्कुल, जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, जिनको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उनका नाम है लब्धि अपर्याप्त जीव।
अपर्याप्त लब्ध,
हाँ एक ही बात है। अपर्याप्त जैसे अभी तो जिसकी 6 पर्याप्ति पूरी होने वाली है, जब तक अभी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है तब तक भी वो अपर्याप्त है ना। जैसे हमारा अभी मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब तक हम क्या कहेंगे? ये अधूरा है, परंतु पूर्ण होने वाला है। वैसे जिनकी पर्याप्ति चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसको निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। निवृत्ति, निवृत्ति नहीं, निवृत्ति। वो वर्ब को दोनों तरफ से नीचे ऊपर ये करना, निवृत्ति यानी रचना, निवृत्ति अपर्याप्त। जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक उसको निवृत्ति अपर्याप्त कहेंगे, और पूरी होने पर पर्याप्त कहेंगे, ये पूरा हो गया ऐसा कहेंगे। हाँ, आपका प्रश्न है नित्य निगोद क्या है, सूक्ष्म के बादर है, वो दोनों हो सकता है। नित्य का अर्थ क्या है? अनादि काल से लगातार निगोद पर्याय में ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चल रहा है उसका अभी तक, उसको कहेंगे नित्य निगोद। और इतर निगोद या चतुर्गति निगोद किसको कहेंगे? एक बार भी निगोद में से बाहर आया है, अन्य एकेंद्रियों में भी गया है, तो भी वो अभी निगोद से बहार निकला, अन्य एकेंद्रिय नहीं पृथ्वी वगैरह, फिर उसमें त्रस भी हो सकता है या वापस भी एकेंद्रिय में चला जाएगा, तो उसका इतना लंबा काल
होता है।
नहीं, कितने बार जन्म मरण करता है उसका माप है, उसी शरीर में 18 बार जन्मता है ऐसा उसका अर्थ नहीं है। जन्म सकता है, कहीं भी जन्म सकता है, परंतु एक श्वास कितना बड़ा है, ये श्वास है ना, हम श्वास लेते हैं वो श्वास नहीं, ये पल्स, दो पल्स के बीच में जो अंतर है ठक और ठक, उसको एक श्वास कहते हैं। और उसका 18वां भाग करना, उसकी उतनी पूरी लाइफ है, اس میں وہ جنم بھی لے گا, اس میں آگامی آیو بھی باندھے گا, ویسے ویسے ایسا بھی ہے نا, نگود میں سے نکل کر منشیہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب انتر مورت کے بھید بہت ہے, اور سوکشم سمے کتنا سوکشم ہے ابھی ہم نے دیکھا. آپ کا پرشن نہیں سمجھ, سنو سنو ان کا پرشن سن. ہاں ہاں منشیا اپریاپت سمورچھن ہی ہوتے ہیں, اور وہ ماں کے پیٹ میں نہیں آتے, وہ شریر کے آدھار سے رہتے, یا جہاں چکرورتی سینا وغیرہ رہتی ہے وہاں وششٹ واتاورن میں اتپن ہوتے ہیں. گرب میں آنے والے سارے گربج پریاپت ہی ہوتے, بھلے وہ گرب ایک گھنٹے میں بھی نشٹ ہو جاوے, پھر بھی وہ اس کا ایک پریاپت منشیا وہ چلا گیا. سمورچن والا, ہاں سمورچن والا. ہاں چلو ابھی ہم سماپت کرتے ہیں. بولو آدینات بھگوان کی جائے.